हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवा अध्याय श्लोक संख्या 11, 12, 10, 13। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाया मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्ता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जैसा कि हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और समस्त पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास कुरुक्षेत्र में आए हैं, और समस्त ब्रह्म ऋषि राज ऋषि और बहुत बड़े बड़े देवता और सब वहां पर आए हैं भीष्म पितामह का प्रवचन सुनने के लिए। और सुत गोस्वामी ने अत्यंत ही सुंदर रीति से भीष्म पितामह के विषय में बताया कि जब भीष्म पितामह ने देखा कि इतने बड़े बड़े राज ऋषि ब्रह्म ऋषि आए हैं, तो भले ही वो हिल नहीं सकते थे, वहां से उठ नहीं सकते थे, फिर भी पूजयामास धर्म क्यों देश काल विभाग वेग, कि जिस तरह देश काल और परिस्थिति के अनुसार जिस जिसकी जैसे जैसा स्वागत करना था वैसा उन्होंने किया, वाणी से किया, अपने नेत्रों से किया और सबको उचित स्वागत किया, क्योंकि वो घर पे नहीं थे और उनकी दशा ऐसी थी कि वो उनको भोजन इत्यादि नहीं दे सकते, लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर उनका सत्कार नहीं हुआ है। और आगे जब उन्होंने कृष्ण को देखा फिर तो उनके प्रेम की और उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा ना रही, क्योंकि भीष्म पितामह जानते थे कि मैं तो क्योंकि यहाँ पर कुरुक्षेत्र में हूँ और कृष्ण वहाँ हस्तिनापुर में है, मैं जाकर भी उनके दर्शन करने नहीं जा सकता हूँ। हम सोच सकते हैं कि कितना दुखी होंगे ना वो कि कृष्ण हस्तिनापुर में है और यहाँ पर वो अकेले बैठे हुए हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं था कि भीष्म पितामह के हृदय से कृष्ण की छवि हटी हो, हर एक क्षण एक एक सांस में वो कृष्ण को स्मरण कर रहे थे, वो इतना कृष्ण को याद कर रहे थे कि अपने आप को अपने कष्टों को भूल गए थे। तो वहां पर जब कृष्ण को भीष्म पितामह ने देखा कि कृष्ण कितने करुणामय हैं, वो जानते हैं कि मैं नहीं जा सकता, आज मेरे प्रीतम स्वयं मुझसे मिलने आए हैं। वास्तव में भक्तों, कृष्ण का प्रेम ऐसा ही है, हमें ये नहीं देखना कि क्या हम उनके पास जा सकते हैं या नहीं। अगर हमारा प्रेम तीव्र होगा ना तो वो किसी तरह से भी मिलन करवा ही देंगे, हम खुद नहीं जा सकेंगे लेकिन वो तो स्वतंत्र है ना, वो तो कहीं भी जा सकते हैं। तो भीष्म पितामह से मिलने के लिए भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के मन को इतना भ्रमित कर दिया और फिर जिसके कारण उनको ये सहयोग बना के वो भीष्म पितामह से मिलने के लिए आज गए। और जब भीष्म पितामह ने कृष्ण को देखा, सुत गोस्वामी कहते हैं कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम, कि जैसे कृष्ण ने देखा कि कैसे भीष्म पितामह को मैं सरलता से वो मुझे देख सके, मेरे दर्शन करने में उनको कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि इधर उधर वो मोड़ नहीं सकते थे, सिर पर भी बाण लगा हुआ थे, हाथों पे भी शरीर को भी वो नहीं ला सकते थे। तो वो कृष्ण जो जगत ईश्वर है, जो इस संसार के ईश्वर है, आसीनम बैठ कर कहां, भीष्म पितामह के चरणों के पास, जहां से वो अत्यंत ही सरलता से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और भीष्म पितामह ने जब सामने कृष्ण को देखा, हृदिस्थं पूजयामास मायायोपात्त विग्रहम, मायायोपात्त अर्थात भगवान की अंतरंग शक्ति, ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा अक्सर भगवान को भगवान से भी आगे निकल जाती है, क्योंकि वो कृपा शक्ति इतनी उसके अंदर इतना पावर है कि जैसे भगवान तो हर जगह पर है, हर जीव के हृदय में भी आसीन है, तो भी भगवान की जो अंतरंग शक्ति है माया यो पात्त विग्रहम, तो वो क्या करती है, भगवान की दिव्य रूप को विग्रह रूप में प्रकट करती है। अंतरंग ये भगवान का जो स्वरूप है वो कोई भौतिक वस्तुओं का नहीं है, ये भगवान की अंतरंग शक्ति है जो भगवान को विग्रह भगवान के स्वरूप में उनको धारण करके इस संसार के जीवों को जो कष्टमय है, और भगवान यहाँ पर आके ऐसी ऐसी भगवान लीलाएं करते हैं, ये भगवान की कृपा है माया शक्ति जो भगवान के विग्रह का निर्माण करती है, भगवान की अंतरंग शक्ति से भगवान इस संसार में आते हैं और ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं जिसके कारण हम उनको श्रवण कर जो उनको उस समय देख रहे होते हैं, और फिर बाद में जितने भी जीव आते हैं जो इन लीलाओं को श्रवण करते हैं, इनको श्रवण करने से हृदय पवित्र होता है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो भीष्म पितामह जानते थे कि मैं तो नहीं जा सकता था, मैं तो विवश था, परंतु माया यो पात्र ग्रहण, भगवान की माया कृपा शक्ति से भगवान यहाँ पर स्वयं आए और हृदयस्थम हृदय के अंदर उनकी पूजा की, नेत्रों से उनकी पूजा की, मन में उनकी पूजा की और जी भर के कृष्ण को निहारने लगे। अत्यंत ही प्रसन्न थे भीष्म पितामह आज इस इन सबको देखकर, क्योंकि ये भीष्म पितामह की हृदय की इच्छा थी कि युधिष्ठिर राज्य करे। पूरा जीवन उन्होंने यही सोचा था कि हस्तिनापुर का जो राज्य है वो युधिष्ठिर को मिले, और आज युधिष्ठिर को इस ठाट बाट के साथ देखकर उन्हें इतनी प्रसन्नता हो रही थी। साक्षात कृष्ण उनके साथ थे, धर्म उनके साथ था, उनको सब अपना दुख भूल गया और उनको देखकर वो इतना प्रसन्न हो रहे थे कि उनको याद ही नहीं रहा कि मैं यहाँ पर शीर्षैया पर लेटा हुआ हूँ, मुझे इतना कष्ट है, कुछ भी याद नहीं रहा। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, पांडुपुत्रानुपासीनां प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागाश अंधिभूतेन चक्षुषा। पांडुपुत्रानुपासीनां प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागाश्रय अंधिभूतेन चक्षुषा। पांडुपुत्रानुपासीनां प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागाश्रय अंधिभूतेन चक्षुषा। पांडुपुत्रानुपासीनां, जब उन्होंने देखा कि पांडुपुत्र उपासना मतलब बैठे हुए एकदम मेरे निकट बैठे हुए हैं, प्रश्रय प्रेम संगता, लेकिन वो जो पांडुपुत्र थे वो इतने दुखी थे पितामह की इस दशा को देखकर, उनको इतना कष्ट हो रहा था, वो सोच रहे थे कि जिस पितामह ने हमें पाला पोसा इस लायक बनाया, जिन्होंने हमारी हर इच्छा को पूरा किया, जिन्होंने हमें इतना स्नेह दिया, उनकी आज हालत को जब उन्होंने देखा कि उनका एक एक अंग में बाण लगे हुए थे, उनका पूरा शरीर बाणों से छल्ली था और वो सोच रहे थे कि इनकी इस हालत का कारण हम हैं, इनको इस दशा पर पहुंचाने वाले हम हैं, तो ये देखने के बाद, उनकी इस स्थिति को देखने के बाद उनके सर झुके हुए थे, उनकी वो पितामह की दशा के विषय में सोच रहे थे कि इनकी जो ये दशा है वो हमारे कारण हुई है। जब उनको देखा ना तो देखते ही सब लोग दुखी इतने हो गए। प्रेम प्रश्रय प्रेम संगता, उनका प्रेम इतना था पितामह के प्रति कि उनके कष्ट को देखकर वो सह नहीं सक रहे थे। इस बात से उनको बहुत कष्ट हो रहा था कि उनकी स्थिति को देखकर, मगर पितामह ने जब उनको देखा तो फिर पितामह जो है वो अपने कष्टों को बिल्कुल भूल गए, बल्कि उनको और भी क्या याद आ रहा था कि मैं पांडव के पुत्र जो ये अभी आए हैं वो कितने धर्मात्मा है, लेकिन जिंदगी में उन्होंने कभी भी कोई सुख नहीं देखा, जब से पैदा हुए उन्होंने जीवन में केवल दुख ही दुख अनुभव किया। अभ्याचष्टानु रागाश्रय, यानी कि उनको जब देखा तो उनके हृदय के अंदर उनके लिए राग उत्पन्न हो गया। अंधिभूतेन चक्षुषा, यानी अनुराग के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए, और अंधिभूतेन मतलब आंखें इतनी धुंधला गई कि जैसे जल आ जाता है आंखों में, फिर हम कैसे दिखाई नहीं देता सही तरह से, तो वो उनको दिखाई नहीं दे रहा था, उनके नेत्र जो है वो जल से सजल हो गए थे और वो सही तरह से देख नहीं पा रहे थे उनको, वो इतना दुखी थे, अपने दुख भूल गए थे, मगर अपने बच्चों पांडवों के दुख को याद करने लगे कि जिंदगी में कभी भी उनको दुर्योधन इत्यादि ने सुकून से नहीं जीने दिया ना। भीष्म पितामह पांडवों की एक एक दुख को जानते थे कि कैसे उनको शुरू में वन में रहना पड़ा, फिर जब वो वापिस से हस्तिनापुर आए तो हर क्षण उनको मरवाने का प्रयत्न किया गया, कभी लाक्षाग्रह में भेजा गया तो कभी द्यूत कीड़ा में कपट किया गया, कभी उनकी पुत्र वधु का वस्त्र हरण करने की चेष्टा की गई, तो कभी वनवास के कष्ट भोगने पड़े। तो विशेषकर भीष्म पितामह जानते थे कि दुर्योधन इन सबको ये कष्ट देने की सदैव चेष्टा करता था, लेकिन फिर भी वो विवश थे, वो पांडवों का साथ नहीं दे पा रहे थे, और पांडवों ने जब तक जिया तो सदैव उन पर दुर्योधन और इन हस्तिनापुर की योजनाओं के कारण इतने दुख आए, तो उन सबको याद करके भीष्म पितामह बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। अनुवाद, पास ही महाराज पांडव के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्म देव ने उन्हें हार्दिक बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद आश्रु थे क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब महाराजा पांडव का निधन हुआ था तो उनके सारे पुत्र छोटे थे, अतएव स्वाभाविक था कि वह राज परिवार के गुरुजनों के विशेष रूप से भीष्म देव के लाड़ प्यार में पलते। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो वे धूर्त दुर्योधन तथा उसकी टोली द्वारा ठगे जाने लगे। यद्यपि भीष्म जानते थे कि पांडव निर्दोष हैं और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे हैं, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। अतएव अंतिम समय में जब भीष्म देव ने महाराज युधिष्ठिर समेत अपने यशस्वी पुत्रों को अपने बगल में बैठे हुए देखा तो महायोद्धा पितामह अपने प्रेम अश्रु रोक ना सके। उनकी आंखों से स्वतः अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। उन्होंने अपने परम पवित्र पौत्रों द्वारा भोगे गए महान कष्टों का स्मरण किया। निश्चय ही वे सर्वाधिक संतुष्ट थे क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे थे, और इसीलिए स्नेह उन्होंने सबों को बहुत बहुत बधाई दी। यहाँ पर सूत गोस्वामी ने बहुत ही दो सुंदर शब्द उच्चारित किए हैं इस श्लोक में। पांडवों के लिए लिखा है, प्रेम शब्द का उच्चारण किया है, पांडुपुत्रानुपासीनान प्रश्रय प्रेम संगतान। पांडव जो है वो भीष्म पितामह से बहुत बहुत प्रेम करते थे, और भीष्म पितामह के लिए उन्होंने एक अलग शब्द यूज किया है, अभ्याचष्टानुरागाश अनुराग। भीष्म का पांडव पुत्रों में अनुराग था, वो वास्तव में बहुत अनुराग करते थे पांडवों से। युद्ध में कई बार ऐसा समय आया कि वो बहुत ढीलाई से लड़ते थे, अपनी शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन नहीं करते थे। वो बहुत स्नेह, उनका हृदय पांडवों के पुत्रों के प्रति इतना स्नेह से आतुर था कि उनको देखते ही उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता। एक बार दुर्योधन रो रो कर कहने लगा, दादाजी आप बुरा नहीं मानना, आप मेरे साथ रहते हो। साफ साफ उन्होंने बोला, दुर्योधन कह रहा था, मैंने आपको सब कुछ दिया है, मैंने आपको भवन दिया है, मैं आप मेरे साथ महल में रहते हो, हमारे यहाँ पर खाते पीते हो, पर आप लड़ तो रहे हो हमारे साथ, परंतु आपका हृदय पांडवों के साथ है। मैं देख रहा हूँ कि अर्जुन के साथ जब आप लड़ते हो तो आप ये नहीं भूल पाते हो कि वो आपका पौत्र है। जब यही करना था तो पहले ही मना कर देते आप मुझे, युद्ध करने के लिए आए क्यों? मैंने खामखा आपका भरोसा किया, तो अंततः तो हमें पराजय ही होगी ना, क्योंकि आपका हृदय तो उनके साथ है। तब भीष्म पितामह को बहुत दुख हुआ क्योंकि ये वास्तव में उन्हीं का राज्य था, लेकिन उन्होंने लिया नहीं था, त्याग दिया था अपनी इच्छा से। इसके बाद तो ये उत्तराधिकारी बने विचित्र वीर्य, धृतराष्ट्र, पांडव और उसके बाद दुर्योधन। ये सब तो उनका छोड़ा हुआ राज्य भोग रहे थे और दुर्योधन उनके सामने आकर ये कह रहा था कि मैं आपको खिला रहा हूँ, मैं आपको पाल रहा हूँ, मैं आपको भवन दे रहा हूँ, आप ठीक से लड़ नहीं रहे हो। भीष्म पितामह ने कहा, देखो दुर्योधन, मुझे जैसा लड़ना होगा ना मैं लड़ रहा हूँ। ये देह तुम्हारा है परंतु हृदय तो पांडवों के साथ है। साफ साफ कह दिया, कपट नहीं करते थे वो। वो कह रहे थे कि मैं भले ही देह से तुम्हारे साथ हूँ लेकिन मेरा मन पांडवों के साथ है। तुम ये चाहते हो कि मैं हृदय भी तुमको दे दूं, तो ये नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो बहुत रोने लगा कि पितामह मुझे क्षमा कर दो, मैंने ऐसा बोला है परंतु मैंने आपके भरोसे से युद्ध किया है। अगर आप ही इस तरह से करोगे तो हम तो कभी भी है ना युद्ध जीत ही नहीं सकेंगे। तब भीष्म पितामह ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि देखो दुर्योधन, तुम जानते नहीं हो कि अर्जुन क्यों जीत रहा है। भगवान उनके साथ है, साक्षात कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण साक्षात भगवान है। संसार की कोई भी शक्ति उनको परास्त नहीं कर सकती। मुझ में कोई बल नहीं है अर्जुन के आगे, मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूँ क्योंकि साक्षात जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण का साथ है उनके साथ। मैं कितनी बार तुमको रोकता था कि युद्ध मत करो, युद्ध मत करो, युद्ध मत करो, मगर तुमने करण के भरोसे आकर युद्ध किया और करण को तो भीष्म पितामह ने डांटा था। एक बार भीष्म पितामह ने कहा कि तुम्हारे कारण ये उदंड हो रहा है। और करण और भीष्म पितामह में हमेशा झगड़ा होता था, मतलब बहुत झगड़ा हो गया था। और भीष्म पितामह ने करण को कहा था कि अरे चांडाल, तुमने बर्बाद किया है इसको, तुम्हारे कारण ये इतना ज्यादा उदंड हो गया। और करण भी इतना जिद्दी था कि उसने बोला कि जब तक भीष्म पितामह सेनापति बने रहेंगे ना मैं युद्ध नहीं करूंगा, देखता हूँ मैं कैसे, जैसे जितना है उनको जैसे विजय प्राप्त करनी है प्राप्त करे, मैं उनके अध्यक्ष में युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन ने बहुत समझाया करण को कि देखो ऐसा मत करो, आप युद्ध करो, युद्ध करो। लेकिन वो मान, पूरे 10 दिन तक घमासान युद्ध चल रहा था और करण बिल्कुल आराम कर रहा था, उसने बिल्कुल युद्ध किया ही नहीं। वास्तव में ये कृष्ण की ट्रिक थी। अब देखो, भीष्म पितामह और करण यदि दोनों युद्ध स्थल में होते तो अर्जुन किसके साथ लड़ाई करता, अर्जुन के लिए प्रॉब्लम हो जाती ना। अर्जुन तो एक के साथ ही लड़ सकते थे, तो जब तक भीष्म थे तब भगवान ने करण को इतना उसकी बुद्धि को चकरा दिया कि वो युद्ध में आए नहीं। अब करण भी नहीं आ रहे थे और भीष्म पितामह भी दिल से युद्ध नहीं कर रहे थे, तो दुर्योधन बहुत ज्यादा हताश हो गया। जब दुर्योधन बहुत रोने लगा और भीष्म पितामह के सामने, और भीष्म पितामह को कहने लगा कि आप ऐसा चाहते हो कि हम ये युद्ध हार जाए, इसीलिए आप ऐसा करते हो। तब भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली कि तुमको ऐसा लगता है ना, तो ठीक है, कल युद्ध में या तो अर्जुन मरेंगे या तो कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी, दोनों में से एक कार्य होगा। अब भीष्म पितामह जानते थे कि भगवान अर्जुन को तो मरने नहीं देंगे। कृष्ण की प्रतिज्ञा थी, अशस्त्रम सहाय मात्र करिष्यमि, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल सहायता करूंगा, मैं आपको राय दूंगा, परामर्श दूंगा, मुझे किसी और तरह से आप लोग भले यूज करना, मैं सारथी बन जाऊंगा लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म ने कहा कि मैं इतना घमासान युद्ध करूंगा कि कृष्ण को शस्त्र उठवा के रहूंगा। यदि मैं वास्तव में गंगा का पुत्र हूं तो ऐसा युद्ध करूंगा कि कृष्ण शस्त्र उठाने पर विवश हो जाएंगे। वास्तव में भक्तों, भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता को जगत में जाहिर कराना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त का मान कभी नहीं टलने देते, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं कृष्ण से शस्त्र उठवा के रहूंगा, ऐसा युद्ध करूंगा कि कृष्ण शस्त्र उठाने पर विवश हो जाएंगे। और फिर हमने देखा कि भीष्म ने इतना भयानक युद्ध किया, रथ तोड़ दिया, ये हो गया वो क्या, और अर्जुन नहीं लड़ पा रहा था भीष्म के साथ, तो कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और टूटे हुए रथ का चक्र उठाकर वो सुदर्शन चक्र की भांति दौड़कर भीष्म पितामह के पास जा रहे थे। उस समय धरती कांपने लगी कि यदि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी तो उसी समय प्रलय आ जाएगा। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे कि कृष्ण नहीं, कृपा कीजिए आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ दिए। लेकिन भीष्म पितामह ने तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करवा ही ली कृष्ण से और दिखा दिया संसार को कि कृष्ण अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो भीष्म पितामह पांडवों से सदैव स्नेह करते थे, अनुराग था उनके प्रति बहुत, और लेकिन फिर भी वो क्या करते, वो कहते थे, भीष्म पितामह का एक श्लोक है महाभारत में, वो ऐसा कहते थे कि अर्थ किसी का दास नहीं होता, मनुष्य अर्थ का दास होता है। यानी कि जो धन दौलत रुपया पैसा वो कभी भी मनुष्य की ओर खींच कर नहीं आता, उसके लिए बल्कि मनुष्य को सदैव उसको कमाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। और क्योंकि मेरा ये देह हस्तिनापुर के सिंहासन का ऋणी है, इसलिए इस देह से तो मैं उसके साथ ही रहूंगा, लेकिन मैं चाहते हुए भी मन से सदैव आप सबके पांडवों के विजय की कामना करते थे। वो स्वयं अपने विजय अपने मार, एक दफा जब युधिष्ठिर गए थे भीष्म पितामह के पास और कहा कि आपके होते हुए विजय तो संभव नहीं है, तो उन्होंने अपने मरने की भी उन्हें बताया कि मेरे मरने का क्या रहस्य है। इतना प्रेम करते थे उनसे, इतना स्नेह करते थे कि उनको बता रहे थे कि मैं इस तरह से मरूंगा, आप ऐसा करना, शिखंडी को मेरे सामने खड़ा कर देना, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ऐसे पितामह जो उनसे इतना स्नेह करते थे, आज जब पांडवों ने उन्हें शरशय्या पर लेटा हुआ देखा तो प्रश्रय प्रेम संगता, प्रेम के कारण उनके उनको देखकर उनके प्रेम को याद करके उनकी नजरें ऊपर नहीं उठ रही थी, सिर उनका झुका हुआ था, संकोच से देख रहे थे, लज्जा आ रही थी उनकी उनको कि हमारे कारण हमारे पितामह की ये दशा हुई है, हमारे पितामह चले जाएंगे जिनके दर्शन के लिए सारा विश्व, इतने बड़े बड़े राज्य ऋषि, इतने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि आए हैं, कोई सुनेगा, कोई पूछेगा कि इनके साथ युद्ध किसने किया, इनकी ये दशा किसने की, तो सबको पता चलेगा जब कि ये हमारे कारण उनकी ये दशा हुई है, तो क्या मुंह दिखाएंगे हम संसार को कि इतने स्नेही पितामह के साथ हमने ऐसा व्यवहार किया। उनको बहुत अपने आप से घृणा आ रही थी, इतनी लज्जा आ रही थी, वो देख नहीं पा रहे थे। एक तो युधिष्ठिर महाराज पहले से दुखी थे और आज भीष्म पितामह की ये दशा देखकर उनको और भी ज्यादा कष्ट हो रहा था। और फिर लेकिन भीष्म पितामह ने जब उनको देखा तो फिर उनको अपने कष्ट ही भूल गए और उनके कष्ट केवल याद आ रहे थे। वो कहने लगे, अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यु यम धर्म नंदना जीवितुम नार्हतम कृष्णम विप्रधर्माच्युताश्रया। अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यु यम धर्म नंदना जीवितुम नार्हतः क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रया। अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूयम धर्मनंदना जीवितुं नार्हतः कृष्णम् विप्रधर्माच्युताश्रया। अहो कष्टम्, ये कितना, आप सबको कितना कष्ट मिला, जीवन भर आपने कष्ट सहे। अहो न्यायम्, ये अन्याय है उसने जिसने तुमको ये सारे कष्ट दिए, आप सबके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये जो जिसने विधाता नहीं, जिसने आप सबके जीवन में इतने सारे कष्ट डाले, उसको न्याय करना आया ही नहीं। क्योंकि यद्युयम धर्म नंदना, आप सब तो धर्म के पुत्र, वास्तव में युधिष्ठिर महाराज धर्म की साक्षात मूर्तिमान धर्म थे। वो कभी भी, उन्होंने जीवन में कोई अधर्म नहीं किया, कोई अन्याय नहीं किया, कुछ अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। और जो भाग्य विधाता है, उसका कर्तव्य है कि वो अधर्मियों को सजा दे। लेकिन उसने, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर उनके भाइयों को इतना जीवन में कष्ट सहना पड़ा, तो फिर भीष्म पितामह कह रहे थे, तुम तो मूर्तिमान धर्म हो, कष्ट और दुख तो अधर्मियों को मिलना चाहिए। कर्म फल देने वाले को लांछन है कि तुम जैसे धर्मात्माओं को इतना दुख दिया उन्होंने। और जीवितम नार्हतम क्लिष्टम, आप लोगों को दुख नहीं देना चाहिए, तुम लोगों को जिंदगी में कभी भी कष्ट नहीं होना चाहिए। विप्रधर्माच्युताश्रय, क्योंकि आप ब्राह्मणों के, धर्म के और अच्युत अर्थात साक्षात भगवान के आश्रय में थे। इस संसार में सबको यही कहा जाता है कि यदि आप धर्म से कार्य करोगे, यदि ब्राह्मणों की सेवा करोगे, यदि आप भगवान की शरण में जाओगे, तो आपको कभी कष्ट नहीं मिलेगा। और आपने ये सब करके दिखाया। यदि तुमको दुखी देखेगा संसार, तो कौन जाएगा ब्राह्मणों के शरण में, कौन सेवा करेगा ब्राह्मणों की, कौन धर्म का पालन करेगा, कौन भगवान की शरण में आएगा। तुमको तो विधाता को एक क्षण के लिए भी दुख नहीं देना चाहिए था, लेकिन उसको न्याय करना आया ही नहीं। अनुवाद, भीष्म देव ने कहा, अहो तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं सही तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीना ही नहीं चाहिए था, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के महान नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्म देव यह समझ गए, इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की घोर विपत्तियों का उल्लेख किया है। वे अन्याय के ही कारण इस कठिनाई में पड़े थे और कुरुक्षेत्र के युद्ध उसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था। इसीलिए उन्हें इस महान नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित रहे हैं, अतएव जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार भीष्म देव ने महाराज को उनकी निराशा भगाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ सहयोग करता है, प्रमाणिक ब्राह्मणों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का कठोरता से पालन करता है, तब तक उसे निराश होने का कोई कारण नहीं है। भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों न हो, भीष्म देव एक महान पुरुष होने के कारण पांडवों पर ऐसा प्रभाव जताना चाह रहे थे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाया कि क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत ज्यादा दुखी थे और जानते थे कि वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि इतना अन्याय हुआ है, इतना सारा युद्ध हुआ है, इतना सारा नरसंहार हुआ है, इतनी सारी अक्षमी सेनाओं का यहाँ पर वध हुआ है, हत्या हुई है मेरे कारण। तो देखते ही उनको बताया कि क्योंकि आप धर्म के राह पर चल रहे थे, ब्राह्मणों की आज्ञाओं का पालन कर रहे थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, साक्षात भगवान के संरक्षण में थे, फिर भी वो अधर्मी आप सबका को कष्ट देते थे, जीवन भर आपको कष्ट दिया, तो उनका उन सबका मरना और जो उनके साथ थे उन सबका मरना अनिवार्य था। आप लोगों ने कोई अधर्म नहीं किया है, आपको कुछ भी संकोच करने की या हृदय में दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि हम भगवान की इच्छा के साथ सहयोग करते हैं, प्रामाणिक ब्राह्मणों के निर्देशों का जब पालन करते हैं, धर्म के सिद्धांतों का कठोरता से पालन करते हैं, तब तक जीव के हृदय में कोई निराशा नहीं होनी चाहिए कि क्या मैं गलत हो सकता हूँ। वो युधिष्ठिर महाराज को देखते ही बताना चाहते कि नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि विप्रधर्माच्युताश्रया, अगर ब्राह्मण विप्र और भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन से कोई भी कार्य किया जाता है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। भले ही दिखने में उसमें हमें कोई ऐसी वस्तु दिखे कि उसमें अपराध हुआ है, लेकिन जो भगवान की इच्छा है, जो ब्राह्मणों का संकेत है, जो शास्त्र की आज्ञा है, उसके अनुसार जब आप करते हो तो वो कभी अधर्म नहीं हो सकता। और आगे वो उनकी माता के कष्टों के विषय में बता रहे थे, कुंती महारानी के कष्टों को याद करके वो अत्यंत दुखी थे और कहते हैं, संस्थिते तीरथे पांडव वृथा बाल प्रजावधु, युष्मत् कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता तो कवती मुहु, संस्थिते तीरथे पांडव वृथा बाल प्रजावधु, युष्मत् कृते बहुन क्लेशान प्रथातो कवती मुहु, संस्थिते तीरथे पांडव वृथा बाल प्रजावधु, युष्मत् कृते बहुन क्लेशान प्राप्तातो कवती मुहु। संस्थिते तीरथे पांडव, संस्थिति का मतलब होता है जब मृत्यु हो गई थी, अतिरथी पांडव की वो छोटी ही थी अभी तक, और उसी आयु में जब पांडव की मृत्यु हो गई तो प्रथा बाल प्रजावधु, वो मेरी कुल वधु प्रथा, उनके छोटे छोटे बच्चे थे और उनके साथ वो वन में रहती थी, बड़ी कठिनाई से उन्होंने उनको पाला, अपने बच्चों को जैसे तैसे करके बड़ा किया, लेकिन जीवन भर संघर्ष का सामना करना पड़ा। बेचारी कुंती को जीवन भर कष्ट ही कष्ट मिला, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, वो राजर्षि की पत्नी थी, पहले वन में, फिर जब लाक्षाग्रह के बाद उनको ब्राह्मण के रूप में अलग अलग वनों में भटकना पड़ा, कभी कभी तो वो भोजन भी नहीं जुटा पाती थी, कभी कभी तो उनको भी भूखे पेट उनके बच्चों के साथ पानी पीकर सो जाना पड़ता था। वो सम्राट की पत्नी थी और वन में बहुत बहुत कष्ट झेले, जब उनके साथ द्योत किरणा में कपट हुआ, उनकी उसके बाद उनको 13 साल का वनवास मिला। 13 साल तक वो उनके पुत्र वनों में भटक रहे थे, जिंदगी भर दुख ही दुख। उनको जिंदगी में कुंती महारानी को कभी भी सुख की सांस लेने का समय नहीं मिला। कुंती को भी दुर्योधन इत्यादि जान से मारना चाहते थे, जब वो सोचते थे लाक्षा भवन में जब कुंती गई, उनके साथ गई थी, वो सोचते थे कुंती के साथ सारे पांडवों को जलाकर राख दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर उन कष्टों को याद करके कहते हैं, संस्थिते तीरथे पांडव वृथा बाल प्रजावधु, छोटे छोटे बच्चों के साथ मेरी बहू ने कितने कष्ट सहे, युष्मत् कृते बहुन क्लेशान, अनेकों कष्ट, बहुत बहुत कष्ट देखे उन्होंने अपने जीवन में। हालांकि वो राजरानी थी, लेकिन सदैव कष्ट उनको भोगने पड़े। प्राप्त तो कवती मुहु, बड़े हुए जब उनके बच्चे पहले छोटे थे तभी भी, और बड़े हुए जब तक अंत तक उनके बच्चों को कष्ट ही कष्ट उन्होंने देखे, और इसके कारण उस महान सती कुंती को कितने कष्ट सहने पड़े। उसको उनके इन कष्टों के निवारण के लिए युद्ध होना अनिवार्य था, कोई गलत नहीं हुआ है। अवश्य उन अपराधियों को दंड मिलना चाहिए था जिन्होंने इतना बड़ा अन्याय किया है आप सबके साथ। अनुवाद, जहां तक मेरे पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडव की मृत्यु होने से विधवा हो गई और अनेक पुत्रों के कारण उसे घोर कष्ट भोगना पड़ा। और जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कुंती देवी के कष्टों पर दुगना शोक प्रकट किया जा रहा है। कम आयु में विधवा हो जाने तथा राज परिवार में अपने अल्प वयस्क पुत्रों के पालन पोषण करने में के कारण उसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा। और जब उसके बच्चे बड़े हो गए तो उनकी करनी से उसे कष्ट उठाना पड़ रहा था। अतएव उसके कष्ट जैसे कि तैसे बने हुए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके भाग्य में कष्ट भोगना बड़ा था। मनुष्य को चाहिए कि विचलित हुए बिना कष्टों को सहे। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी ने अत्यंत सुंदर बताया कि वो कुंती महारानी जो कि राजरानी थी, विधवा होने के बाद उन्होंने बहुत बहुत कष्ट सहे, मन मन में भारी मारी मारी फिरती रही। अपने बच्चों की इस दीन दशा को देखकर जीवन भर वो दुखी रही। और आज जब उन अधर्मियों का नाश हो गया है, सारा अधर्म नष्ट हो गया है, कष्ट समाप्त हो गए हैं, तो तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम लोग दुखी हो, तुम अभी तक संतुष्ट नहीं हो, तुम दुखी हो और ऐसी बातें कर रहे हो, तो जिसके कारण वो आज भी फिर वापस से दुखी हो रही है। आज तो बल्कि तुम लोगों को चाहिए कि अपनी माता के साथ संतुष्ट राज्य करो, अपनी माता को सुख दो। वो राज्य रानी जिन्होंने पूरी जिंदगी दुख सहा, आज भी तुम्हारे कर्मों के कारण वो दुखी हो रही है, आज तो कम से कम जाके उसको सुखी करो। आज और जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान की इच्छा से हुआ है। भगवान ने ये दैव्य काल के अनुसार ये सब कुछ हुआ है और आप सबने भगवान की आज्ञा का पालन किया है, तो इसमें अपराध का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह हमें और भी अत्यंत सुंदर सुंदर बातें बताएंगे धर्म के विषय में। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और सेवा को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।